राम भद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। भक्तिभक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुवे तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न याने। भक्ति को भगवान को संत महापुरुषों को स्वीकार कर लेने पर अनेक प्रकार के विघ्न समाप्त होते हैं। विघ्न कौन से खत्म होते हैं? जो भगवत प्राप्ति में विघ्न आते हैं, भक्ति में विघ्न आते हैं, संसार के जो विघ्न हैं इनको संत महापुरुष भगवान के भक्त विघ्न मानते नहीं। इसको तो वे साधन सामग्री मानते हैं, कल्याण की प्राप्ति का साधन मानते हैं। ये विघ्न है ही नहीं। विघ्न है हमारे अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, स्वार्थ, राग, द्वेष, छल, कपट, ईर्ष्या, असूया, जितने अंदर के विकार जो हम खुद पैदा करते हैं ये विघ्न है। देखो, जो भगवान के बनाए हुए विघ्न है उनके लिए तो हम भगवान को कह सकते हैं, परंतु जो विघ्न हम हमारी फैक्ट्री में तैयार करें और भगवान से कहे महाराज जी विघ्न हटाओ, तो भगवान तो उसमें भी दया करते हैं। बनाते हम और भगवान से कहे महाराज ये हमारे राग हो गया, ये द्वेष हो गया, हमने पैदा तो कर लिया, अब आप इसको दूर करो। किलोत पाटी वो बानर है। एक जगह क्या हुआ, लकड़ा हार लकड़ा काट रहे थे तो बड़े बड़े लकड़ थे, उनमें छीनियां डाल दी, छीनियां डालने से वो थोड़े चौड़े हो गए, फिर बड़ी छीनी डालते हैं तो फिर बड़े हो जाते हैं, फिर उनको काटते हैं अलग अलग ऐसे। तो सूर्यास्त हो रहा था तो सब लकड़हारों ने छीनियां डाल डालकर थोड़ा चौड़ा कर दिया उनको, कि सुबह आएंगे छीनियां निकाल लेंगे और लकड़ों को फाड़ देंगे। वो दो चले गए, इधर बंदर आए कूदते फांदते। बंदरों ने आकर के देखा ये क्या तमाशा है, यूं देखा, बंदर की आदत है सचला नहीं रहता हूं। वो लकड़ों के ऊपर बैठ गए, जो छीनियां थी उन छीनियों को हिलाया तो छीनियां निकल गई। निकलने से उन बंदरों की पूंछ थी वो छेद में चली गई, वो पिचक गई। अब क्या क्या अब पूंछ यूं यूं खूब करे, वो लकड़ा पूरा का पूरा उधर पूंछ में तकलीफ हो। रात भर बेचारे मशक्कत करते रहे, कुछ नहीं हुआ। सुबह वो लकड़ा हरा आए, अब देखे अब क्या करें, हम भी इनका क्या क्या पास में जाए तो ये खा जाए। तब बंदरों का जिधर मुंह था उसके पीछे की तरफ वे लकड़ा आ रहा लकड़ी को फाड़ने लगे और फिर उसको मुंह चौड़ा करके एक एक बंदर को निकाल दिया। तो जैसे बंदर अपनी हरकतों से स्वयं जान बूझ कर उसमें फंस गया, लेकिन उसको उस फसावट से दूर होने का कोई उपाय नहीं दिखा, ऐसे हम लोगों की दशा है। संसार में फंस तो गए जान बूझ करके, क्योंकि राग द्वेष हर्ष शोक काम क्रोध लोभ अहंकार ये भगवान ने तो बनाए नहीं, ये हमने बनाए। भगवान की बनाई हुई सृष्टि होती तो भगवान पर जिम्मेवारी होती, भगवान पर जिम्मेदारी नहीं है तब भी भगवान कहते हैं तब भी कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, तुम्हारे सारे विकार मैं दूर कर दूंगा। यह है भगवान के भजन में बाधा, नासत विघ्न अनेक। जो जो भगवान के भक्तों की लीलाएं पढ़ते हैं, जो जो भगवान हमको जैसे कोई झाला करके बुलाते हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जैसे माँ बच्चे को बुलाती है। अब एक माँ यदि वहां बैठी है, बच्चा यदि वहां है, तो माँ ही कहेगी आजा बेटा आजा मैं यहाँ हूँ। ऐसे भक्त चरित्र के माध्यम से भगवान हमको अपने निकट बुलाते हैं। नाबाजी महाराज ने इसी भावना से कि भगवान की कृपा कैसे मिले कि भक्त का चरित्र लिख दो, बताया था ना कि राम जी की कृपा कैसे मिली तुलसीदास जी को, कि पहले अयोध्या कांड लिखा था, भरत जी का चरित्र लिखा तो खुश हो गए राम जी, बहुत खुश हो गए। तुलसीदास जी में भरत जैसी भक्ति आ गई, बड़ी विलक्षण भक्ति हुई, तब भक्ति प्रदान उन्होंने पूरा रामचरित्र लिखा। तुलसीदास जी जैसा रामचरित्र भक्ति से परिपूर्ण कोई दूसरा चरित्र नहीं है। वाल्मीकि चरित्र है वो लीला प्रधान है, क्रिया प्रधान है, और ये अध्यात्म रामायण ज्ञान प्रधान है। तुलसीदास जी का है ये भक्ति प्रधान है। इसी प्रकार से नाबाजी महाराज ने भी ये जो भक्तमाल कही है, ये भगवान की भक्ति भक्तों से प्राप्त करने के लिए कही है। भगवान भी अपने भक्तों को जब भक्ति देने की इच्छा होती है तो भक्तों के पास भेजते हैं। आपने सुना ना, पुष्पक विमान से भगवान अयोध्या लंका से रवाना हुए अयोध्या के लिए, तो भरद्वाज ऋषि के आश्रम में आए तो भगवान ने कहा हनुमान जी हनुमान अयोध्या जाओ। भरत क्या करता है, उसको जाकर अपनी ये सब बात सुनाओ, हमारे ये बात बताओ, उस समय उसके चेहरे पर क्या भाव होता है वो बताओ। यदि इतना सा भी उसके चेहरे पर अनिच्छा का भाव हो कि अब राम जी नहीं आवे तो अच्छा है, तो इतना सा भी भाव हो तो मेरे को बोल देना। वाल्मीकि रामायण में आता है ऐसे। परंतु हनुमान जी को भेजा इसलिए कि अब मेरी भक्ति ये कहां सीखेगा। हनुमान को मैं तो मिल गया, लेकिन मेरी पूर्ण भक्ति मिलनी चाहिए। अभी तक इसको मेरे पूर्ण भक्त का दर्शन नहीं हुआ है, छोटे मोटे दर्शन हुए विभीषण वगैरह के। पूर्ण भक्त हमारा भरत है। तो भरत जी के हाव भाव क्रिया व्यवहार ये सब देख करने के लिए भगवान ने भेजा हनुमान जी को। हनुमान जी ब्राह्मण बन करके गए, अरे भरत जी के सामने तो बंदरी बन के जाना चाहिए था आपको, क्योंकि आप भरत जी से पहले मिल चुके हो। संजीवनी बूटी ला रहे थे तब भरत जी आपसे अपरिचित तो है नहीं, और आप भी अपरिचित नहीं, तो ये हनुमान जी महाराज बन करके गए, ब्राह्मण बन करके गए। ब्राह्मण बन करके क्यों गए कि यदि मैं पहले वाले शरीर से जाऊं, बंदर शरीर से जाऊं, तो मुझे भगवान का बड़ा निकट मान करके मुझे क्या पता भक्ति उतनी दे कि न दे, और मेरे मन में भी ये अभिमान आ सकता है कि मैं भी भगवान का भगत हूं। जिस आदमी से कुछ सीखना होता है, लेना होता है, तो उस समय अपना अभिमान एक तरफ रख करके नम्रता से लेना चाहिए। कहीं मेरे अंदर भक्ति का अहंकार न आ जाए, अतएव हनुमान जी ब्राह्मण बन करके सरलता से उनके पास गए और राम जी का समाचार सुनाया। वो राम जी के विरह में रो रहे, राम रूपी विरह के अंदर भरत जी डूब रहे थे, राम रूपी विरह सागर में। तो भरत जी महाराज को डूबते हुए को जैसे कोई नौका मिल जाए, ऐसे हनुमान जी नौका मिल गए। रे क्या बात है, क्या बात है भरत जी, रोते क्यों हो, क्या बताऊं। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत, सीता अनुज सहित प्रभु आवत। एक पंक्ति में सारी रामलीला कह दी। तब राम जी बड़े दबे, भरत जी बड़े खुश हुए कि हो शत्रु को जीत लिया। रिपुरन जीति सुजस सुर गावत और सीता अनुज सहित, बस यही चाहते थे सीता मिल जाए और भाई लक्ष्मण जो बेहोश हुआ था वो होश में आ जाए, पूरा ज्ञान कह दिया। फिर कौन हो तुम ये बात कहने वाले, भाई ऐसा शुभ समाचार देने वाले तुम हो कौन। अब देखो ब्राह्मण बन करके गए थे ना, तो ब्राह्मण को तो दान पुण्य लेना चाहिए। कहीं कहीं यदि ब्राह्मण दान पुण्य नहीं लेता है तो वो यजमान के साथ न्याय नहीं करता है। ब्राह्मण को दान पुण्य वहां लेना चाहिए। अब देखा कि अब इस खुशखबरी में जाने मुझे क्या क्या दे देंगे, तो कहा कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं, मैं तो पवन पुत्र हनुमान हूं, बंदर हूं, बंदर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है ठीक है। कैसे हनुमान जी महाराज चतुर है, मारुत सुत में कपि हनुमाना, वायु पुत्र हनुमान हूं और बंदर हूं मैं, तो ब्राह्मण का रूप बनाकर आया हूं। पर क्या हनुमान जी में सरलता आई, जब भरत जी से इतना संपर्क हुआ, भक्त का दर्शन हुआ, तो ये नहीं कहा कि मैं वही हूं जो दवाई लेकर के जा रहा था, आपने मुझे बाण मारा था, वो मैं हूं, बिल्कुल नहीं कही। मारुत सुत में कपि हनुमान, और आपको ये शुभ संदेश सुनाने के लिए आया है। अच्छा अच्छा, ठीक है, आओ आओ बैठ बैठ, मेरा हृदय बहुत तड़प रहा है, तभी तो कह रहा हूं राम जी आ रहे हैं। ये राम जी से मेरी तड़पन दूर नहीं होगी, राम जी से तड़पन नहीं हो, राम जी के लिए तड़प रहे हो। तड़प तो रहा हूं राम जी के लिए, पर तड़पन दूर राम जी से नहीं होगी। क्या भक्तों की शब्दावली है, भक्तों का व्यवहार है। राम जी के लिए रो रहे हैं कि राम जी से रोना नहीं मिटेगा, तो फिर तो मुझे राम जी की कथा सुनाओ। अब मोही चरित्र सुनाओ, तो मुझे अपना चरित्र सुनाओ, राम जी की कथा सुनाओ, पूरी कथा सुनाओ। तब आदि से कथा सुनाई। दशरथ जी के बेटा है, विश्वामित्र जी के साथ गए, धनुष तोड़ा, सीता जी लाए, वरदान मांगा, वनवास में गए और आप चित्रकूट में मिले, फिर वहां से प्रस्थान किए, पंचवटी में गए और गीदराज से मित्रता हो गई, फिर उधर रावण मारीच के संग से सीता को हर ले गया, फिर हम लोग बंदर लोग मिले। अब वास्तव में तो सब कथा तो कह ही दी थी वहां, पहले हनुमान जी ने कह दी थी। रामचरित्र जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन नाही। तृप्ति नहीं हुई हनुमान जी भरत जी को, पहले कथा सुन लो अब मुझे सुनाओ। तब उन्होंने पूरे रावण के मारने के बाद भी रावण मरमरा गया, और इधर पुष्प विमान से राम जी आ रहे हैं, भरद्वाज ऋषि तक आ गए और कल आने वाले, ये यहां तक कथा सुनी। तब कहा कि बहुत अच्छा, अब हम तैयारी करते हैं। तो भगवान की भक्ति भक्तों के पास मिलती है, भगवान भी भक्तों के पास भेजते हैं। उद्धव जी थे भगवान के प्रेमी भक्त, आते प्रेमी भक्तों में, पहले ज्ञानी भक्त थे वे। इसलिए उद्धव जब तक भगवान ब्रज में थे तब तक उद्धव जी कभी मिलने नहीं आए, कोई नहीं आया, वसुदेव जी भी नहीं आए, देवकी जी भी नहीं आई। कैद खाने से छूटने के बाद लुकते छिपते भी आकर मिल लेते। वसुदेव जी को तो पता ही था कि मैंने अपने पुत्र को नंद जी के यहां रख रखा है, मिलने नहीं आए। क्यों नहीं आए? ब्रजभूमि है, ब्रजभूमि तो भगवान के अंतरंग प्रेमियों की भूमि है। उद्धव जी भी नहीं आए मिल, कोई नहीं आया, बड़े ऋषि मुनि महापुरुष नारद आदि कोई नहीं आया। थोड़ा बहुत छेड़खानी करने आए ये ब्रह्मा जी इंद्र, तो उनको मुंह की खानी पड़ी। ब्रह्मा जी ने छेड़खानी की, ब्रह्मा जी आपको पता ही भागवत सुनते ही, थोड़ा बहुत इंद्र ने भी वहां उत्पात मचाया तो वो भी सीधा हो गया। लेकिन जब भगवान मथुरा आ गए तो वहां लगा कि भाई उद्धव को तो भक्ति का पाठ पढ़ाना है, तब उद्धव जी को ब्रज में भेजा स्वयं की अनुपस्थिति में, क्योंकि मेरी उपस्थिति में तो मेरा राज्य रहेगा, मेरी अनुपस्थिति में मेरे भक्तों का राज्य रहेगा, और मेरे भक्तों से जो भक्ति मिलेगी वो मेरे से नहीं मिल सकती, इसलिए उद्धव जी को भेजा। इसलिए भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक तिनके पद वंदन किए ये नासत विघ्न अनेक। अब उन भक्तों के अंदर हम मैत्रेय जी की कथा सुनाते हैं। मैत्रेय इनकी माता का नाम मित्रा था, इसलिए मित्राया अपत्यम पुमान मैत्रेय वो मैत्रेय कहलाते हैं। इनके पिता का नाम कुशारू था, कुशारू इसलिए इनको कौशारव भी बोलते हैं। अब देखो मैत्रेय जी के विषय में आपको इतनी आश्चर्यजनक बात बताए, इतनी आशा की बात बताए कि अपने सबको बहुत बड़ा बल मिल सकता है, ऐसी विचित्र कथा है। ध्यान से सुनिए, ये ध्यान से सुनना चाहिए तो एक शब्द तकिया कलाम हो गया, ध्यान से तो आप सुनते ही हैं। एक बार वेद व्यास जी महाराज किसी मार्ग से जा रहे थे तो मार्ग के ऊपर एक कीड़ा था, कीड़ा मकोड़ा, वो मकोड़ा बड़ा तेजी से यूं चल रहा था, तो वेद व्यास जी ने अपने दिव्य ज्ञान से उस मकोड़े को अपनी भाषा में समझाया। थोड़ा पानी था, वो पानी उस पर डाला, किस पर? मकोड़े पर। कहा कि तू इतना जल्दी क्यों भगरा है रे, ये पूरा जंगल खाली है, तुमको जंगल में ही रहना है, इतना जल्दी से क्यों भागता है? तो वेद व्यास जी के दिए हुए जल के प्रभाव से वो बोलने लगा कि महाराज पीछे से बैलगाड़ी आ रही है, वो बैलगाड़ी आएगी तो उसके पहिए के नीचे आ जाऊंगा तो मैं कुचल जाऊंगा, कुचल जाऊं तो मर जाऊंगा, मर जाऊंगा, इसलिए मैं बचने के लिए जल्दी जल्दी जा रहा हूं। तो वेद व्यास जी महाराज हंसे, वेद व्यास जी ने कहा क्या रे तू इसमें कौन सा सुख पा रहा है भाई, मर जाएगा तो मर जाएगा, कोई मनुष्य हो और मरे तब तो कुछ पता ही चले भी भगवान के भजन के बिना मर जाएंगे, तेरा तो कीड़ा है, तेरे मरने से क्या है, मर जाएगा तो क्या बड़ी बात हो जाएगी, तू मनुष्य थोड़ा ही है, मनुष्य के तो हर्जा हो जाएगी, भी मर जाएंगे तो भगवान का भजन फिर कब करेंगे, क्यों भग रहा है? तो कहने लगा महाराज जितने जीव है वो अपने अपने शरीरों में जीना चाहते, मरना कोई नहीं चाहता, क्योंकि मरने में एक दुख होता है, और हर हर जीव की आदत है कि मैं सुखपूर्वक रहूं, तो तुझे आज तक कहीं सुख मिला क्या? कि नहीं व्यासी महाराज, मुझे कई योनियों में ऊंचे नीचे योनियों में जाए सुख तो नहीं मिला। सुख सामग्री मिली, सुख सागरी महाराज में एक बार देव योनि में था, देवताओं की योनियों में था मैं, क्या वहां सुख की सामग्री है। परंतु आपको बताएं कि देव योनि में जो मुझे सुख मिलता था वो मुझे इस कीड़े योनि में भी सुख मिलता है। सुख की अनुभूति वही होती है, सुख वही मिलता है। महाराज जी तो एक बात और बोलते थे, उनके बराबर के शब्दों का प्रयोग तो हम लोगों को करना नहीं चाहिए, परंतु वो एक बात कहते हैं कि जैसे हर आदमी को अच्छे अच्छे भोग पदार्थ में जो सुख मिलता है, बढ़िया भोजन करने में जो सुख मिलता है, ऐसे विट भोजी पशु पक्षियों को उसमें भी वही सुख मिलता है। कौआ है वो विष्ठा पर मुंह देता है, सुअर विष्ठा में मुंह देता है, कुकर विष्ठा में मुंह देता है, उसको जो सुख मिलता है वो मनुष्य को अच्छे अच्छे पदार्थों में हलवा पूरी खाने में उसको वही सुख मिलता है। सुख की अनुभूति एक जैसी, पदार्थ अलग अलग है। तो उसने कहा कि मैं ऊंचे नीचे सब योनि में जाया महाराज, मुझे तो सुख का अनुभव सब जगह सब इन इंद्रियों से एक जैसा ही सुख होता है। तो मरने में दुख होता है इसलिए हम मरना नहीं चाहते, और गर्भवास से लेकर के अंतिम श्वास निकले तब तक जीव के शरीर जीव के यहां दुख ही दुख रहता है। व्यास जी ने कहा कि अरे कीड़े, तुझे तो एक ऋषि मुनियों का सा ज्ञान है, ये ज्ञान तुझे इस योनि में कैसे मिला, इस योनि में कैसे मिला बताओ। क्या महाराज, मैंने कई बार मानव शरीर प्राप्त किया, वेद विरुद्ध आचरण था मेरा, बड़ा भारी दुराचार अनाचार कदाचार, वेद विरुद्ध आचरण। शास्त्र ने कहा उसके में जान जान के विपरीत चलता था। क्या होता है शास्त्र, क्या होता है वेद, क्या होता है ऐसा करो ऐसा मत करो, ऐसा क्या होता है, मैं किसी को कुछ नहीं समझता, न शास्त्रों को न संतों को न महात्माओं को न भगवान को न भक्ति को, किसी को कुछ नहीं समझता, इसलिए मुझे बहुत पाप के शरीर देखने पड़े थे। एक बार भूले भटके मानव शरीर में मेरी एक बूढ़ी माँ थी, मेरे पिता भी मर गए और मैं अकेला ही उनकी संतान, बूढ़ी हो गई मेरी माँ, बस बूढ़ी माँ की मैंने सेवा की, बूढ़ी माँ की सेवा। और एक बार कोई मेरे घर पर अतिथि आ गए थे, उस अतिथि का मैंने सत्कार किया, दो काम मुझे याद है, बाकी कोई मैंने अच्छा काम किया वो याद नहीं, इतने बार मैंने मानव शरीर लिया। तब मुझे इन दो बातों के प्रभाव से गर्भ में प्राणी कितना दुख पाता है, उसके जन्म में कितना दुख होता है, मरने में कितना दुख होता है, इसका विवेक माता की सेवा के प्रभाव से और अतिथि की सेवा के प्रभाव से मुझे है। व्यास जी ने कहा कि भाई अच्छी बात है, तुझे इतने क्लेशों का स्मरण है तो तूने मेरे साथ बैठ करके सत्संग कर लिया, तूने कीड़े शरीर में मकोड़े के शरीर में बैठकर मेरे साथ इतनी देर सत्संग कर लिया, अब जब तक तेरा कल्याण नहीं होगा तब तक मैं तेरा पीछा करता रहूंगा, निश्चिंत हो जा, क्योंकि तूने सत्संग कर लिया, सत्संग मेरे पास बैठकर तूने ये जीव क्या है, परमात्मा क्या है, कल्याण कैसे होता है, मैंने कितना बुरा किया है, क्या अच्छा होता है, इन सब बातों का तूने समय निकाल करके विचार कर लिया मेरे साथ बैठकर। अब तेरे कल्याण की जिम्मेवारी मेरे पर आ गई। बताया कि देखो मकोड़े, सत्संग होता है वो दिखने में नाकुश दिखता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। विशाल तालाब है, उसमें एक छोटा सा कंकर डाल दो, उस कंकर की लहर भी छोटी हो भले ही, वो भी आगे दूर तक जाती है, दूर तक किनारे तक लगती है। ऐसे ही सत्संग दिखने में तो एक छोटा सा साधन दिखता है, परंतु इससे हमारे अंदर ऐसे संस्कार पड़ते हैं, ऐसे संस्कार पड़ते हैं कि वो जन्म जन्मांतर तक हमारा कल्याण के बिना नहीं छोड़ते। तुमने सत्संग कर लिया, तुम्हारा निश्चित कल्याण होगा। मकोड़े ने देखा कि एक संत का संग मिल गया। वेदव्यास ने ये और कहा कि ये तो तेरे को मकोड़े के शरीर में मिला है, सौभाग्य से यदि मानव शरीर में मिले तो देख इसका तमाशा। मानव शरीर मिले और फिर सत्संग मिले तो बस समझ लो कि अब अपना जीवन सफल हो गया, तेरे कीड़े योनि में भी सफल हो। ऐसे बातें कर रहे थे, इतने में वो बैलगाड़ी आ गई। बैलगाड़ी आ गई, तुम घबराया नहीं मकोड़ा, और वो बैलगाड़ी मकोड़े के ऊपर से निकल गई और मकोड़ा मर गया। मकोड़ा मरने के बाद और योनियों में गया, जहां जहां जिन जिन योनियों में गया वेदव्यास जी महाराज उसको दिखते गए, ज्यादा बातचीत नहीं हुई। ऐसे करते 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 वो क्षत्रिय कुल में जन्म लिया, प्रजा का पालन करता था। वेदव्यास जी वहां उपस्थित होकर उसको धर्म सत्संग की बातें सुनाई, बहुत प्रसन्न हुआ। यही कीड़ा क्षत्रिय शरीर में, बहुत प्रसन्न हुआ। व्यास जी ने कहा कि तुझे पिछले जन्म की बात सब याद है महाराज, पूरी याद है। मानव शरीर में अब आपका सत्संग मिल गया महाराज, बहुत कृपा हुई, पर महाराज अब तो मेरी आप मुक्ति कर दो कि मैं मुक्ति नहीं चाहता। अरे मूर्ख, अब तो अपना ना मैं मुक्ति नहीं चाहता, तो मैं फिर आपका सत्संग चाहता हूं। अब मेरा मानव शरीर तो समाप्त होने को आया, मेरे अंदर कोई लौकिक वासना नहीं रही, केवल एक वासना है कि फिर मुझे संत का संग मिले और आपका संग मिले, मैं अगली बार फिर जन्म लेना चाहता हूं। क्या अच्छी बात है, अगली बार में वो ब्राह्मण शरीर में आया है। ब्राह्मण शरीर में आने पर फिर वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि भाई सत्संग करो, खूब सत्संग किया, सत्संग करने इतना इतना आनंद का अनुभव, इतने फिर आयु पूरी होने को आई कि महाराज मैं एक जन्म और चाहता हूं, एक जन्म। अभी तो मेरा परिवार वगैरह सब था, अब अगला जन्म एक और चाहता हूं, न तो परिवार के झंझट रहे न और कोई झंझट रहे, केवल सत्संग करता रहूं। व्यास जी ने कहा भाई जो एक बार सत्संग कर लेता है उसका कल्याण तो हो जाता है, पर तुम सत्संग के लिए ही दोबारा आना चाहते हो तब तो भाई भगवान तुमको फिर जन्म देंगे। फिर वो ब्राह्मण आया और ब्राह्मण शरीर में ही आया। फिर बहुदक तीर्थ है, वहां पर जाकर के वेद व्यास जी ने उसको खूब ज्ञान दिया, खूब तृप्त हो गया। तृप्त हुआ तो वहां उसके अंदर भगवान का प्रेम पैदा हो गया। पहले तो ज्ञान हुआ, प्रेम हुआ, जब खूब भगवान में लबालब प्रेम हो गया, अब महाराज जीवे तो क्या और मरे तो क्या, अब तो जहां भगवान के प्रेमी लोग रहते हैं उस लोक में आप भेज रहे हो, वहां तो हरदम भगवान के साथ हमारा सानिध्य रहेगा। तो ऐसे ये मैत्री जी महाराज थे, ये अंतिम जन्म इनका हुआ ना वो मैत्रेय रूप में हुआ, इनका नाम मैत्रेय जी था। इन्होंने अपने गुरु पराशर ऋषि से भागवत सुनी थी। पराशर वेद व्यास महाराज के पिता, पराशर ऋषि से भागवत सुनी, तो भागवत में आप लोग सुनते ही। एक बार की बात है कि पराशर ऋषि ने विचार किया कि मेरे पास ये भागवत सुनता तो है, परंतु इसके अंदर कुछ ज्ञान उतरा कि नहीं। लोग सुन तो लेते हैं कि साहब भागवत सुनने से कल्याण होता है, चलो अपन सुन लो। सुनने की प्रधानता से सुनते हैं, परंतु जो बात सुनते हैं उसको जीवन में लाने के लिए बहुत कम लोग सुनते हैं। सुनने का महात्म्य होता है तो राजी हो जाते हैं, कहने वाला भी राजी, सुनने वाला भी राजी। पर एक बात है, आजकल के जमाने में सुनने वालों का कल्याण जल्दी होता है, सुनाने वाले का कल्याण जल्दी नहीं होगा। जो भागवत आदि ग्रंथ सुनाते हैं उनका कल्याण होना मुश्किल है, सुनने वालों का कल्याण तो आराम से होगा, जल्दी होगा और अच्छा होगा। क्यों? फिर इस चक्र में नहीं पढ़ना, इसकी व्याख्या नहीं करनी, वो आप खुद ही समझ लीजिए। सुनाने वाले की अपेक्षा सुनने वाले का आज के जमाने में जल्दी कल्याण होता है, क्योंकि सुनने वाला निरहंकृत होकर सुनता है, कोई मन में अहंकार नहीं। सुनने में किस बात का अहंकार, सुनाने में तो अहंकार उसकी बड़ाई होती है, उसको उच्चासन मिलता है, उसको अनेक प्रकार के द्रव्य का लालच भी रहता है। लोभ है, लालच है, अहंकार है, ये मिटाने के लिए भागवत कथा कहनी चाहिए, और इसको कहने वाले इसको बढ़ाते हैं तो उनके कल्याण में तो संदेह है, सुनने वालों के कल्याण में कोई संदेह नहीं। अस्तु। तो पराशर ऋषि ने देखा कि शिष्य की थोड़ी परीक्षा लेनी चाहिए। देखो, लोग देखते हैं कि गुरुजी को पता नहीं चलता, शिष्य जो असली गुरु होते थे वो शिष्य बनकर के और पढ़ाते थे, गुरु बनकर के नहीं पढ़ाते, शिष्य बनकर के पढ़ाते हैं। कि शिष्य बनकर कैसे पढ़ाएंगे, कि शिष्य जितना समझता है, जिस स्तर का है उस स्तर से वो बोलेंगे, तो शिष्य होकर के और उसको समझाएंगे तो वो बात समझ में आएगी, समझ में नहीं आएगी। तो पराशर ऋषि ने देखा कि इसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तो पराशर ऋषि ने कहा, मैत्रेय। हाँ गुरुदेव। अरे भैया, तुमने हमसे भागवत सीखी है ना, पढ़ी है ना, तो गुरु दक्षिणा तो चाहिए। हाँ महाराज, आज्ञा करो। तो सुवर्ण लेकर के आओ, सुवर्ण लेकर के आओ, सुवर्ण। सुवर्ण दो हमको, तुमने हमसे भागवत पढ़ी है, ठीक है महाराज। अब मैत्रेय जी ने विचार किया कि सुवर्ण मांगा, स्वर्ण नहीं माना है, सुवर्ण मांगा है। स्वर्ण बोलते स्वर्ण, इन्होंने सुवर्ण कहा है, सुवर्ण मांगा है, सुवर्ण लाओ। सु माने अच्छा, वर्ण माने रूप रंग, अच्छा से अच्छा रूप रंग लाओ। सोने में तो कलयुग है, तो भागवत में बताते हैं खुद ही। तो यहां सुवर्ण से क्या तात्पर्य है, सोने से तो नहीं हो सकता, अच्छा वर्ण लाओ। अब अच्छा वर्ण लाए तो अच्छा वर्ण किसका हो सकता है, सुंदर से सुंदर संसार में कौन हो सकता है। तब उनकी वृत्ति गई एकदम भागवत के दशम स्कंद में भगवान कृष्ण के स्वरूप की। क्या सुंदर वर्रा पीडम नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वास कनक कपिशम वैजयंती च माला। रंध्रान्वेणो रधर सुदया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यं स्वपद रमणं प्राविशत गीत कीर्ति। भगवान का रूप याद आया होगा। और भी भगवान रात्रि काल चंद्रमा की चांदनी में बंसरी बजाते थे, किसी पत्थर पर विराजमान होकर अपनी राग में भगवान स्वयं मस्त हो जाते थे। अपनी अंदर से रागनी निकलती है और वे बंसरी बजाते बजाते इतने मस्त हो जाते थे कि गोपी धीरे से आकर उनकी बांसुरी छीन लेती थी, सिरका लेती थी, चिपके जाती और बांसुरी उनकी निकाल लेती, तो भी कृष्ण की अंगुलियां यूं होती रहती थी, वही कृष्ण की मस्ती। कोई बोध ही नहीं है कि मेरी बंसुरी कहां गई। फिर जो है वो गोपी वापिस उनके हाथ में बंसुरी दे दी थी, वैसी बंसुरी बजती, तो उनको आश्चर्य होता कि अरे बंसुरी रहे तो भी वही बजती है, बंसुरी नहीं रहे तो वही मस्ती है। ऐसी ऐसी परीक्षाएं दी गई। इतना सुंदर और कौन हो सकता है, पर ये तो छवि हृदय में रहती है, मैं उनको ला करके कैसे दूं। गुरु ने तो आज्ञा दिए सुवर्ण लेकर के आओ और मुझे दक्षिणा में दे। अब क्या 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 और गुरु की आज्ञा का पालन करना धर्म है, और जो आज्ञा मेरे से पालित हो ही नहीं सकती ऐसी बात गुरु के मुख से निकल ही नहीं सकती। और भागवत के अंदर तो जैसे कृष्ण भगवान ने गुरु धर्म निभाया है, ऐसे गुरु धर्म निभाने वाले को ज्ञान अंदर ठहरता है, उसका ज्ञान उसका काम आता है। तो अब क्या करूंगा क्या नहीं करूंगा। ऐसे करते करते वो गंडकी नदी के किनारे गए। ये नेपाल की तरफ बताते हैं, और वहां जो है सुंदर सुंदर सालग्राम बहुत होते हैं, गोल मटोल चिकने सालग्राम, उनके ऊपर चिन्ह रहता है, ये मुख का चिन्ह है, ये आंख का चिन्ह है, ये चिबुक है, ऐसा छोटा चिन्ह होता है, बड़ा चिकना पत्थर, इतना चिकना हो। तो एक पत्थर ले लिया उन्होंने सालग्राम का, वो देखा। अब उसके अंदर जितनी सुंदरता की भावना की उतना ही वो सुंदर दिखे। देखो आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, कभी आप मंदिर में जाओ, भगवान का जो मंदिर हो ना, शास्त्रीय विधि विधान से जो मंदिर की मूर्ति प्रतिष्ठित की गई हो और जिसके अंदर आपकी श्रद्धा हो, उसको आप जितने प्रेम से देखोगे वो आपको मूर्ति और ही ढंग से दिखेगी। कल की अपेक्षा आज जाके देखोगे तो और विलक्षण दर्शन होंगे। इसलिए तो कहते हैं रोज रोज लोग कहते हैं, रोज रोज ये हिंदू लोग रोज रोज एक ही मंदिर में एक ही मूर्ति को क्या देखते हैं। तो जो भक्ति को जानते नहीं, भगवत प्रेम को जानते नहीं, उनको तो आश्चर्य होता है। वो लोग कहते हैं समय खराब करते हैं, वही तो मूर्ति है राम जी की, वही तो मूर्ति है कृष्ण जी की, वही तो मूर्ति है शिव जी की, वही तो मूर्ति है विष्णु भगवान की, वही तो मूर्ति है गणेश जी की। न रोज 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 जाके क्या दर्शन करते हैं, हाथ जोड़ते आते रोज रोज क्या क्या आते कि भाई आप इस विषय में जानते नहीं, आप इस विषय में समझते नहीं। संत होते हैं वो रोज जाते हैं। वृंदावन में एक सूरदास जी रोज भगवान ठाकुर जी का दर्शन करने जाए, रोज सूरदास। लोगों ने पूछा महाराज आपको तो भगवान का श्री विग्रह दिखता ही नहीं है, आप यहाँ क्या लेते हो, क्या दर्शन होता है। कहा कि देखो मैं दर्शन करने नहीं आता, मैं दर्शन करने नहीं आता क्योंकि मुझे दर्शन होता नहीं, मैं तो ठाकुर जी को दर्शन देने आता हूँ। कहीं ठाकुर जी को वहां दर्शन करने के लिए आना न पड़े इसलिए ठाकुर जी को दर्शन देने आता हूं। एक सूरदास जी ने कहा मैं ठाकुर जी के यहाँ हाजिरी भरने आता हूं, कामकाज तो मेरे से कुछ होता नहीं, ठाकुर जी के यहाँ हाजिरी भर देता हूं, कहता हूं ठाकुर जी आज की मेरी एब्सेंट मत लिखना, आ गया हूं बस इसलिए आता हूं। सूरदासों की अलग अलग, एक ने कहा कि मेरी आंख फूटी है, भगवान की आंख थोड़ी फूटी हुई है। देखो मंदिर में जाओ और भगवान को साक्षात भगवान नहीं देखो तो अपराध है, ये भक्ति का अपराध है, मूर्ति का अपराध। मूर्ति को साक्षात समझना चाहिए, इसलिए मंदिर के सामने, मूर्ति के सामने किसी को बेअदबी से नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, कभी किसी पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। चाहे माँ बाप ही हो, माँ बाप और उनके साथ में बेटा है तो बेटा यदि चंचलता करता है तो माँ या पिता उसको अदब से समझाएंगे, ठाकुर जी के सामने मैं कौन होता हूँ डांटने वाला डपटने वाला, बड़ों के सामने छोटे थोड़े ही बोलते हैं। घर में दादाजी बैठे हुए हो और पोता कुछ गड़बड़ करता हो तो दादाजी का बेटा आकर के अपने लड़के को धमकाएगा थोड़े ही, दादाजी बैठे मैं कौन हूँ धमकाने वाला, मेरे को धमकाने वाले यहाँ बैठे हैं तो मैं कैसे कहूंगा दादाजी जाने पोताजी जाने, वो नहीं बोलते। दादाजी नहीं हो तो फिर आंख बचा करके फिर तो उसको समझा सकते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी के सामने कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को ऊंची आवाज में नहीं बोलना चाहिए, किसी के सामने डांट करके नहीं बोलना चाहिए, हाथ उठाने का प्रश्न ही नहीं है। ठाकुर जी के सामने नम्र रहना चाहिए, मंदिर में गपशप नहीं लगानी चाहिए। जैसे बड़े आदमी बैठे हो अपन बोलते नहीं है, बोलना नहीं चाहिए, ऐसे ठाकुर जी ठाकुर जी बस एकदम नम्र कायदे में रहे। लोग एकदम मूर्ति है न सुने है न देखे है, ऐसी भावना से जाएंगे तो अपराध लगेगा, साक्षात भगवान समझ करके जाना चाहिए। तो उन्होंने साक्षात भगवान लेकर के शालग्राम भगवान को लेकर के और अपने गुरु के पास में गए। गुरु जी ने कहा लिया है भाई सुवर्ण लिया है कि हमारा लिया है, कृपा तो हो गई भगवान की कृपा होगी तो लाओ दो। तो उन्होंने जाकर शालग्राम की मूर्ति दी, बड़े खुश हो गए गुरु जी। खुश होकर के फिर परीक्षा और लेते ऊपर से, अच्छा भाई तू सुवर्ण लाया है, मैंने तो कहा था सुवर्ण लाओ तो स्वर्ण क्यों नहीं लाया रे स्वर्ण, क्या महाराज आपने सुवर्ण कहा है, सुवर्णम आने स्वर्णम आने नहीं कहा है, पहली बात। दूसरी बात है कि सोने का और आपका कोई संबंध ही नहीं, ये क्या हो महाराज आपका इतना भागवत में अगाध प्रेम है, उनका आपका सोने में इतना सा भी प्रेम हो ही नहीं सकता है तो मैं सुवर्ण का अर्थ सोना अर्थ क्यों लगाऊंगा, इतना विशद आपके भागवत। तब बड़े खुश होकर के कहने लगे कि मैत्रेय जी हम आपको आशीर्वाद देते हैं कि आप भगवान के मुख से भी भागवत सुनोगे, भगवान के मुख से आशीर्वाद दिया। और उद्धव जी ने जब भागवत सुनी तो मैत्रेय जी ने भी वहां पर भागवत सुनी, पर ये बात भागवत के अंदर जब पढ़ते हैं तो ये समझ में कम आती है। भागवत के अंदर उद्धव जी को ज्ञान दिया है भगवान ने द्वारिका के महल में, और इधर उद्धव जी ये भी बोलते हैं कि मैं भगवान के पीछे पीछे प्रभास क्षेत्र में गया, सरस्वती नदी के किनारे गया और वहां पर मैत्रेय जी आए थे, मैत्रेय जी के सामने भगवान ने मुझे ज्ञान दिया, भागवत सुनाया। ये दोनों ही बातें भागवत में आती हैं। ऐसे प्रसंग आए ना एक ही पुस्तक में एक ही ग्रंथ में ऐसी दो अलग अलग लीलाएं आए तो लोग कहते हैं ये क्या है, ये आपके यहाँ एक बात तो है नहीं, वहां उसका समाधान गोस्वामी जी ने बड़ा अच्छा किया है। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, हर कल्प के अंदर भगवान की लीला में कुछ भिन्नता होती है। आपसे पूछा जाए कि आप सोमानी गेस्ट हाउस में सत्संग करने जा रहे हैं कितना कितने दिन हो गए साहब, इतने दिन हो गए 15 दिन हो गए 20 दिन हो गए सत्संग करते हैं, तो 15-20 दिन हो गए तो आपको एक कपड़ा ही पहन के जाते थे क्या, है नहीं, कभी धोती में जाते हैं, कभी पजामा में जाते हैं, कभी पजामा भी और ढंग का, एक कस्वादार पजामा, चूड़ीदार पजामा, वो एक जो है पैंट पहनने जाते हैं, ऐसे जाते हैं। माताएं बहने अपने अपने ढंग की अलग अलग पोशाक पहन करके आती, एक ही पोशाक पहन के थोड़ी आते हैं। ऐसे ही भगवान हर द्वापर में लीला करते हैं, हर त्रेता में लीला करते हैं, हर सतयुग में अपने अपने ढंग की लीला करते हैं। कहीं कुछ भिन्नता आ जाती है तो वो कल्प भेद से भिन्नता मानी जानी चाहिए। एक कल्प में द्वारिका में उपदेश दिया तो एक कल्प के अंदर मैत्रेय जी को और उद्धव जी को, दोनों को भगवान ने प्रभास क्षेत्र में भागवत सुनाई। ऐसे समाधान करना चाहिए, समाधान सही भी है। रोज आदमी मिलते हैं पर एक जैसी ड्रेस थोड़ी रखते हैं, आपस में सब मिलते हैं, बाजार जाते हैं, आते हैं, रोज सुबह नहाते हैं, रोज सुबह ड्रेस पहनते हैं। ऐसे हर त्रेता में राम का अवतार, हर त्रेता हर द्वापर में कृष्ण का अवतार, हर सतयुग के अंदर नृसिंह भगवान का अवतार, ये सब अवतार होते ही रहते हैं। तो इस प्रकार से ये शालग्राम जी को लेकर के जब आए तो बड़े सुंदर वर्ण वाले भगवान का अर्थ समझ गए मैत्रेय जी, तो गुरु जी ने भरपूर आशीर्वाद दिया। विदुर जी महाराज ने मैत्रेय जी से यही पूछा था कि महाराज आपको ये ज्ञान कहां से मिला, कि मुझे ज्ञान मेरे गुरु जी से मिला और मुझे भगवान ने भी ज्ञान दिया, और ये भी कहा था कि देखो ये ज्ञान तुम विदुर जी को दे देना, उद्धव को नहीं कहा, मुझे कहा है। तो उद्धव जी को, विदुर जी को उद्धव जी भी मिले थे और मैत्रेय जी भी मिले थे। उद्धव जी ने भी यही कहा कि मैं विदुर जी आपको तो ज्ञान मैत्रेय जी देंगे, वही बोल सकते, मैं तो बोल नहीं सकता हूँ, आप दे दो, ज्ञान देने में क्या है कि मैं तो कह ही नहीं सकता, मैं वो ज्ञान कह नहीं सकता हूँ। क्यों? अब नहीं कह सकता, वाणी काम नहीं करती, बुद्धि काम नहीं करती। जब भगवान के प्रेम में ही मन बुद्धि इंद्रियां डूबी हुई है, अब कैसे तो कहे, क्या कहे, वो अपने अंदर का आनंद उसमें डूबे रहते हैं, वो उनके लिए फिर कहना सुनना एक आपत्ति होती है। जो उद्धव जी भगवान को ज्ञान देते थे, भगवान को समझाते ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं ऐसा होना चाहिए, आप क्या ये गोपियां गोपियां लगा रखी हैं, आप अद्वैत हो, आप वो हो या आप, अब जब उद्धव जी का जब प्रसंग आएगा तब देखना, भगवान गोपियों के लिए तो रोएंगे और उद्धव जी भगवान को देखकर तमाशा करेंगे, क्या है, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर परब्रह्म परमेश्वर सर्वस्वरूप होकर आपसे कौन मिलता है और कौन आपसे अलग होता है, कहां आप में हंसना है, कहां आप में रोना है। ऐसे करते हैं भगवान और रोते हैं, तेरे वचनों से मेरे छाती में तकलीफ होती है, तू मेरे प्रेमियों के प्रेमी नहीं जानता है कि क्या होता है प्रेम, प्रेम तो अपने स्वरूप में ही होता है। ऐसे उद्धव जी खूब बात काटते हैं, फिर भगवान का मेरे से माता बच्ची होती नहीं, तू जाएगा ब्रज में, जाया ब्रज में जाकर आते हैं, उनका देखते हैं तब अनुरे भगवान की बात में कितनी सच्चता है, कितनी वास्तविकता है। फिर एक चित्रकेतु भगत का भी नाम लेते हैं, चित्रकेतु की कथा तो प्राय सभी भागवत सुनने वाले जानते हैं। चित्रकेतु था, इसके 1 करोड़ रानियां थी, कोई संतान थी नहीं। फिर अंगिरा ऋषि के प्रताप से उनके एक संतान हुआ और उस संतान को जहर दे दिया सौतों ने, जहर से वो मर गया। फिर राजा रानी सब रोए, नारद जी आए, पानी छिड़कार वो जीव जीवित हो गया। नारद जी ने कहा रहे तेरे माँ बाप रो रहे, उधर देख तू मेरी तरफ क्या देता, कौन माँ बाप, किसके माँ बाप, कब के माँ बाप, क्यों माँ बाप, एक जन्म इनको दे दिया बस ठीक है, इनका बेटा हो गया, इनका कोई ऋण था चुक गया, हम तो ऋण चुकाते हैं बैठे इधर उधर, कोई बाप बनता है, कोई बेटा बनता है, कोई माँ बनती है, ये सब कर्मों का ऋण है और कुछ नहीं। फिर उससे पूछा, अब देखो नई बात इसमें क्या है, बाकी तो भागवत में आती है, खूब सुनिए क्या सुनाए। उससे पूछा कि तू वास्तव में कौन है, तब उसने अपना परिचय दिया कि मैं वास्तव में कौन हूं, जो बताता हूं कि मैं पूर्व जन्म में पांचाल देश का राजा था। संतों के पास बैठकर खूब सत्संग करता था, सत्संग करने पर फिर मेरा संसार से स्वाभाविक ही आकर्षण हट गया, न राज्य में मोह रहा, न धन में मोह रहा, न परिवार में मोह रहा, न व्यक्ति में मोह रहा, किसी से भी मोह नहीं रहा, स्वाभाविक ऐसा चित्त बन गया। मैं क्या करूं, तो मैं सब छोड़ छाड़ करके भिक्षावृत्ति से निर्वाह करता था, भिक्षावृत्ति से निर्वाह करता था, और भगवान का गुणगान करना और भगवान का नाम लेना और भगवान की कथा सुनना, उसमें मुझे ऐसे रस टपकता था उसमें, जैसे कोई ये कंद होता है, वो और रस कंद होता है, रस से भरा हुआ कोई झरना होता है, उसके समान मुझे मीठा लगता था भगवत चरित्र, खूब अच्छा लगता था। तो एक गांव में मैं गया घूमते घूमते, तो घूमते घूमते गया तो उस गांव के अंदर मुझे लोगों ने कहा कि देखो जी, हम आपको भिक्षा बनी बनाई तो नहीं देंगे, हम आपको आटा वगैरह दे देते हैं, आटा है, दाल है, इसको सीधी भिक्षा बोलते हैं, सीधा सीधा पौ दे दिया मेरे को, ठीक है हमको तो रोटी खानी है। उस समय भूल मेरे से ये हो गई कि जब वो चूल्हा चिताने लगे तो एक सरकंडा था, छाणा, छाणे के अंदर खूब जीव जंतु थे, मैंने ध्यान दिया नहीं, और जितने जीव जंतु थे वो एक बार झड़का दिया, इतना ही मैंने ध्यान दिया, अंदर और जीव जंतु थे, ध्यान दिया नहीं। मुझे देखना चाहिए कि जब ऊपर ऊपर इसके इतने जीव जंतु हैं तो अंदर भी हो सकते हैं, छाणे को फोड़ना चाहिए था या उस छाणे को त्याग देना चाहिए था, इतनी मेरे में अकल नहीं, केवल भूख के मारे मैंने कहा जल्दी भोजन बनाए, सरकंडा लेकर मैंने चूल्हे के नीचे डाल दिया, सब वो जीव मर गए बेचारे, चींटियां सब कीड़ियां ही कीड़ियां मर गई। फिर मैंने भगवान के भोग लगाया, भोग लगाया और फिर मैंने प्रसाद पा लिया। वो जो मैंने भगवान के भोग लगाया और जीवन में मैंने सत्संग किया, उसके प्रभाव से तो देखो नारद जी आपके दर्शन हो रहे हैं, और वे जो चींटियां थी, जिन चींटियों को सरकंडे के अंदर मैंने जलने दिया, वो चींटियां ही मेरा बदला लेने के लिए मेरे पिता की रानियां बनकर आई और उन्होंने मुझे जहर देकर के मारा, क्योंकि पिछले जन्म में मैंने इनको कष्ट दिया। तो इस प्रकार से भगवान की भक्ति भी है और कर्मों का फल भी है। अब मेरा संत दर्शन हो गया, अब मेरा कल्याण हो गया, अब मैं दोबारा संसार में नहीं आऊंगा। ऐसा ये चित्र कहते हैं। एक बार ब्रह्मर्षियों की सभा लगी हुई, उसमें भगवान शंकर की गोद में पार्वती जी बैठी हुई थी। चित्र केतु आकाश से जा रहा था और भगवान शंकर की खूब हंसी उड़ाने लगा। भगवान शंकर ने देखा, देख करके भगवान शंकर मुस्कुराए, क्योंकि चित्रकेतु को तो सत्संग मिला हुआ था नारद जी का और भगवान के दर्शन भी हुए थे, परम वैष्णव है वो, जान गए भगवान शंकर। पार्वती को क्रोध आया, स्वाभाविक है, कौन ऐसी पतिव्रता स्त्री होगी कि जिसके पति का अपमान हो और वो स्त्री सहन कर ले, और फिर पार्वती जी जैसी पतिव्रता स्त्री, उनको भरी सभा में क्रोध आया, क्रोध से उसको शाप दे दिया, कहा कि तू समझता ही नहीं है कि किस कारण से मुझे गोद में बैठाया है, तू समझता ही नहीं, ऐसे आक्षेप लगाता है। केवल बाहर की क्रिया देखकर किसी को अच्छा बुरा नहीं कहना चाहिए, जिसमें बड़े पुरुषों के लिए खास बड़े पुरुष होते हैं वो हर क्रिया को बड़ी समझदारी से करते हैं। तूने साहब तूने ऐसा ये आरोप लगाया कि असभ्य है, जाओ तुम असुरयोनि में जाओ। फिर वो नीचे आया, चरणों में गिरा कि माताजी आपको दुख हो गया इसलिए मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। जिस योनि में भी भेजे दंड देवे, दंड से तो सुधार होता है। जीव का कोई भी किसी प्रकार का कर्म फल से दंड मिलता है तो उससे उसका सुधार होता है। मेरे लिए तो सुधार की बात है, आपको तकलीफ हो गई इसलिए मैं क्षमा याचना करता हूं। पार्वती जी ने समझाया कि देखो भगवान शंकर सबको ये बताना चाहते थे कि प्रकृति और पुरुष ये मैं और शिव जी ऐसे ऐसे हैं, एक होते हुए भी दो हैं। आपस में पूरी प्रकृति और पुरुष मिल नहीं सकते हैं। जैसे तिल और चावल मिल नहीं सकते, ऐसे पुरुष और प्रकृति मिल नहीं सकते। मेरे गोद में बैठाया मैं प्रकृति हूं, भगवान शंकर है ये पुरुष है, ये परब्रह्म परमात्मा है, मैं माया हूं। माया उन्हीं में ही रहती है, उन्हीं से अभिन्न रहती है, परंतु फिर भी माया का रूप कुछ अलग ही होता है। इस बात का ये विवेचन कर रहे थे, उदाहरण मेरा देते हुए कि देखो मेरी पत्नी है, हम दोनों दंपति कहलाते हैं, परंतु मेरे साथ रहते हुए भी, मेरी गोद में बैठे हुए भी मुझसे अलग है। बैठने का कारण तो समझना कि क्यों बैठी मैं, क्यों बैठाया गया मुझे। तूने तो कह दिया कि पागलों की तरह बैठे हैं, ये तो संसारी पुरुषों की तरह से बैठे हैं। इतने बड़ी सभा के अंदर तुमने जो हमारा अपमान किया था, शंकर जी का अपमान किया, इस कारण से हमने तुमको श्राप दे दिया था। कहा कि नहीं, बड़ा अच्छा किया। उन्हीं की कृपा से उस चित्रकेतु के अंदर फिर नारद जी की सत्संग वगैरह सबका बड़ा अच्छा असर पड़ा। तो वृत्रासुर बना तो उसने भगवान की भक्ति भक्ति मांगी, अजात पक्षा इव मातरं खगा। इसलिए सज्जनों, हमारे संत महापुरुषों ने भगवान की भक्ति को किसी भी जूनी के अंदर उसको गिरते पड़ते नष्ट होते दुख पाते नहीं देखा। इसलिए भगवान की भक्ति मानव शरीर में बड़ी दुर्लभ है। भक्ति का मार्ग अपनाकर सहजी कल्याण कर लेना चाहिए।
बोलो राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राम।